السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. باب حفظ اللسان. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قابل احترام بزرگو دوستو، کتاب الرقاق میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ باب لائے ہیں، باب حفظ اللسان، زبان کو قابو میں رکھنا، زبان کی حفاظت کرنا. علماء نے دو حکمتیں بیان فرمائی ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ بات اصل میں یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے دلوں میں نرمی پیدا ہو، دلوں کی نرمی یہ ضروری ہے. تو دلوں میں سختی پیدا کرنے والی جو چیزیں ہیں اس میں کثرت کلام ہے. آدمی جب کثرت کلام بہت زیادہ بولنے لگتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس میں ایک بیماری دل کی سختی ہے، اور دل کی سختی اتنی خطرناک ہے کہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی: اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع. اے اللہ، میں ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جس میں خشیت نہ ہو، نرمی نہ ہو. تو ہمیں یہ سوچنا ہے، کثرت کلام یہ دلوں کی سختی کا ذریعہ ہے، اور جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے. تو اسی لیے ہماری زبان کیا ہے، یہ قابو میں ہو. دلوں پر جو ہے دو قسم کے حملے ہوتے ہیں. ایک حملہ شبہات کا ہے، ڈاؤٹس کا، اور ایک حملہ شہوتوں کا ہے. شیطان وسوسوں کے ذریعے دلوں میں شبہات پیدا کرتا رہتا ہے، ایک اس کا حملہ ہے. دوسرا شہوتوں کا حملہ. شہوات میں کئی قسم ہیں، ایک ہے کثرت کلام، بعض مرتبہ زیادہ بات کرنے کی بھی شہوت ہوتی ہے، شہوت کئی قسم کی ہے. تو یہ چیزیں بڑی خطرناک ہیں. ان البلایا موکل بالنطق، بڑی بڑی بلائیں اور آزمائشیں اور پریشانیاں بول کے پیچھے چھپی ہوئی ہوتی ہیں. بول ایک ہوتا ہے، جملہ ایک ہوتا ہے، اس کے پیچھے بڑا بہت بڑے بڑے جو ہے نا فتنے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، بلائیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. قرآن پاک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ بیان فرمایا جس میں منافقین نے ان پر تہمت لگائی. علماء فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں سب سے درد والا جو واقعہ اور مرحلہ جو آپ کو پیش آیا وہ طائف کا نہیں تھا، بلکہ یہ افق والا واقعہ تھا. منافقین کچھ لوگ مل کر جو ہے آپ کی اہلیہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگا دی، جس کے نتیجے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار پڑ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. مجلس میں بیٹھے رہتے، جو آدمی جو ہے نا جس نے یہ فتنہ اچھالا، آپ اس کا نام نہیں بولے کبھی. آپ یہ کہتے تھے کہ लोगों को क्या हो गया कि उन्होंने तकलीफ देने में मेरे घर वालों को भी नहीं छोड़ा। इतने दर्द के साथ आप कहते थे। एक लंबा अरसा एक बहुत बड़े मुफस्सिर हैं जारुल्लाह ज़मखशरी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी तफसीर की किताब तफसीर की क्लास में पढ़ाई जाती है, अल्लामा उनकी किताब है तफसीर कशाफ। उनको जारुल्लाह इसलिए कहते थे कि वो बस बैतुल्लाह से हमेशा जुड़े हुए रहते थे, उनको अल्लाह के घर के पड़ोसी। उन्होंने तफसीर में लिखा है कि पूरे कुरान पाक में अल्लाह ताला का जो गज़ब है जितना गज़ब इन 14 आयतों में है कहीं और जगह नहीं है। वो कहाँ पे? ये हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के वाक़े में, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया पर, आप महात उम्मुल मोमिनीन पर जब मुनाफिकीन ने तोहमत लगाई। इसीलिए हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये पूरे वाक़े के पीछे अगर देखें एक बोल है। मुनाफिकीन ने एक शोशा छोड़ा था, उसका नतीजा ये है कि मदीने के एक एक घर में उस पर हालात आए। तो इन्नल बलाया मुवक्कलुम बिन नुत्क, बोल जो है ना ये बड़े बड़े बलाएं लेकर आता है। इसलिए ज़बान की हिफाजत, ज़बान की कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह ने जो दी है। कुरान पाक पढ़ते हैं, हदीस पाक पढ़ते हैं, ज़िक्र करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, अपने अंदर की बात दूसरों के सामने जाहिर करते हैं ज़बान के ज़रिए। इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने दी है, तो ये नेमत के इस्तेमाल का सरीका बताया कि इस नेमत को कैसे इस्तेमाल करें, कि इसको इस पर इसको काबू करें, अपने बोल को काबू करें, अपनी बातचीत को कंट्रोल करें। अमलिक लिसानक, अपनी ज़बान पे काबू हो, अपनी ज़बान पर कंट्रोल हो। ऐसा नहीं है कि आदमी जो है अपनी जो चाहे बोल दे। दूसरी बात यहाँ पर उलमा ने मुहद्दिसीन ने ये लिखी है कि हिफ्ज़ुल लिसान, क्या वजह है? हमें आखिरत में जाना है, आखिरत का तोशा हमारा ये आमाल है, हमारी नमाज, हमारा दीन, हमारी तिलावत, ये हमारे आमाल है, ये तोशा है, इसको ले जाना है वहाँ पे। तो इसको बचाने का एक तरीका हमारी ज़बान है। अगर कोई अपनी नमाज को बचाना चाहता है, अपना दीन बचाना चाहता है, अपनी ज़बान की हिफाजत करे। वरना तो अगर आदमी नमाज भी पढ़ रहा है, ज़बान भी आज़ाद है, तो मतलब ये है कि वह धोखे में है। वो धोखा यह है कि वो अपने को समझ रहा है, मैं बयान कर रहा हूँ, मैं बहुत काम कर रहा हूँ, मैं अच्छा तिलावत कर रहा हूँ, जिक्र कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, कयामत में धोखा खुलेगा। इसीलिए कयामत का एक नाम है यौमुत तगाबुन। जो आदमी धोखे में रहता दुनिया में, उसका धोखा अल्लाह खोल देते वहाँ पर। पूरी एक सूरत है सूरह तगाबुन, तगाबुन के माने गबन, धोखा हो गया। अरे मैं क्या समझ रहा था, इतनी इतनी इबादतें मैंने की, इतना जिक्र मैंने किया, इतना सब कुछ किया, अब वहां उठ के खड़े होकर क्या है, मेरा जिक्र, मेरी नमाज, मेरे आमाल सब चले गए। क्यों भाई? मैंने किसी की गीबत की, मैंने किसी के बारे में इल्ज़ाम लगाया, मैंने किसी का कुछ कहा, मैंने किसी का कुछ कहा। तो इसीलिए जो है ना कुरान पाक में भी अल्लाह ताला जो आयत में फरमाए, निकाह के मौके पर भी आयत पढ़ते हैं ना, या अय्युहल लदीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ये निकाह के मौके पे भी पढ़ते हैं। कौल सदीद क्या है? मुफस्सरीन कहते हैं जबान से जुड़े हुए जितने अयूब हैं उन अयूब से हमारी जबान पाक हो। यह है कौल सदीद। जबान से जुड़े हुए कितने ऐब हैं? झूठ है, गीबत है, इल्ज़ाम है, तोहमत है, लान तान है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 20 गुनाह कबीरा सिर्फ जबान से रिलेटेड है। अगर कोई आदमी अपनी जबान को काबू में कर ले, बड़े बड़े 20 गुनाहों से वो बच गया। झूठ कितना बड़ा गुनाह, गीबत, अल्लाहु अकबर, गीबत तो आम है, घर घर के अंदर घुसी हुई है, जिसकी वजह से अल्लाह की रहमत हटी हुई है। बदकारी के अड्डों पर कभी अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है? जिस इलाके में गीबत हो, सोचें दोस्तों, गीबत क्या है? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की इज्जत को बाकी नहीं रखता, गीबत में उसकी जो है बात खोल रहा है। फलां ऐसा फलां ऐसा, सही है, सही होने के बावजूद गीबत है। अगर जरा सा आगे बढ़ गई तो इल्जाम हो गया। और हदीस पाक में आता है, जिस शख्स ने किसी पर तोहमत लगाई 80 साल की उसकी नेकियां बर्बाद हो जाती हैं। 80 साल की नेकियां, एक मुसलमान की इज्जत को अपनी इज्जत समझना, जबान बड़ी बड़ी अहम चीज है। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसे काबू कैसे करना है, काबू कैसे करें, कंट्रोल कैसे करें। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवील उस्समत थे, बहुत खामोश रहने वाले, बहुत खामोश। कसीर उस्समत, तवील उस्समत, ये आपके लिए अल्फाज आए हैं, बहुत ज्यादा खामोश। फजूल, जब आदमी ज्यादा बोलने लगता है तो फिर क्या है, उसका इस्लाम का हुस्न भी खत्म हो जाता है। मिन हुस्न इस्लामी तरकुहु मा ला यानी, आदमी बोलना। इसीलिए हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु बड़ी अजीब बात फरमाया करते थे, तअल्लमुस समत, जिस तरह कमा तअल्लमुल कलाम, जिस तरह बोलना सीखते हो उस तरह खामोशी भी सीखो। जैसे कल मैंने एक बात बताई, एक सहाबी थे, उन्होंने एक बात कही, मेरे पास अल्लाह ताला ने मुझे अल्लाह के पास जाने के अल्लाह ताला की बारगाह में जाते हुए मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मेरे इस अमल से मेरी नजात अता। वो क्या थी, मैंने कभी किसी की जबान से तकलीफ नहीं दी। मा आज़ैतु बिलिसानी अहद, मा आज़ैतु बिलिसानी अहद। हज़रत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, उनके खास खादिम, ये बात जब हजरत का इंतकाल हुआ, रमज़ान का महीना था, जुमा का दिन था, सूरह कहफ़ पढ़ते हुए, सूरह यासीन पढ़ते हुए हजरत दुनिया से रुख्सत हो गए। तो उस पर जो है ना मकालात लिखे, हजरत की जिंदगी कैसी थी, जो उनके खास खादिम थे उन्होंने एक बड़ी अजीब बात लिखी, मैंने हजरत की खिदमत में कई साल खिदमत में गुजारी लेकिन कभी हजरत से गीबत नहीं सुनी। सुभान अल्लाह, कभी गीबत नहीं सुनी, किसी के बारे में बुरा कहते हुए मैंने सुना ही नहीं। दोस्तों, ये एक मश्क है, आदमी जो है अपनी जबान, सोच कैसे कैसे काबू में आएगी, वो बता रहे हैं। ये है दो चीजें, एक आयत पेश की, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन आतीद, जो कुछ जबान से निकल रहा है जुमला, जो कुछ तुम बोल रहे हो, एक मुकर्रर है निगहबान, वो उसको महफूज कर रहा है। जो कुछ मैं बोल रहा हूं रिकॉर्डिंग हो रही, हो रही नहीं हो रही, तो आदमी सोच के बोलेगा, जो चाहे बोलेगा क्या, नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है, बाद में भी सुनेंगे। तो अगर ये यकीन पैदा हो कि मेरी जबान से जो जुमला निकलेगा, चाहे घर के अंदर हो चाहे कहीं भी हो, ये रिकॉर्डिंग चल रही है और रिकॉर्डिंग खुलेगी कयामत के दिन, तो आदमी महतात हो जाएगा। इसलिए जिसके सामने आखिरत होती है उसकी जबान उसके काबू में होती है। अगर जबान काबू में नहीं है तो फिर तो जो है ना ऐसे खतर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शेर है, जराहात उस्सिनान लहल तियान, जराहात उस्सिनान, सिनान कहते हैं तीर के नेजे के जो जख्म होते ना, वो बहुत जल्द सूख जाते हैं। जबान के जो डंक होते हैं, जबान के जो जख्म होते हैं, वो बहुत देर से जाते हैं, वो बड़े जहरीले होते हैं, बहुत जहरीले। घर में खाने में बैठे हैं, थोड़ा सा जो है ना नमक ज्यादा हो गया, शौहर को गुस्सा आया, एक जुमला है हमेशा, यानी हमेशा एक जुमला है, हमेशा खाने में नमक ज्यादा होता है, हालांकि हमेशा नहीं होता। ये जुमला हमेशा बीवी को ठेस पहुंचा दी, बीवी भी पलट के कहती है, हमेशा आप यही बोलते रहते हैं, हालांकि शौहर हमेशा नहीं बोलता। ये इसको, ये उसने इसको कहा, तो दोनों का दिल टूट। एक जुमला है, इसलिए बस जुमले बड़े छोटे छोटे लेकिन बड़े खतरनाक होते हैं, दिलों को चोट पहुंचाने वाले। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस शख्स का यकीन आखिरत पर हो, अल्लाह पर हो, मुझे अल्लाह के सामने खड़ा होना है, तो उसकी जबान उसके काबू में होती है। वो या तो सही बात बोलता है या तो वो खामोश रहता है। जब आखिरत सामने नहीं है तो चलो जो चाहे बोले, जिसको चाहे बोले। जबान से ना बड़ा महफूज है ना छोटा महफूज है, ना आलिम महफूज है ना गैर आलिम महफूज है। क्यों भाई, आजाद है, ठीक है, क्या है, इसलिए दोस्तों हमारी जबान को हमें खैर का आदि बनाना, इसके लिए मश्क दो चीजें हैं, एक खामोश रहने की आदत डालना और दूसरा सोचते हुए बोलना, अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह का जिक्र करते रहना, हमारी जबान अल्लाह का जिक्र हो। कभी कोई बात हो जाए माफी मांग लेना, कभी कोई बात निकल जाए माफी मांग लेना। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह हजरत उमर से माफी मांग रहे हैं और वो बात ज्यादा दिल को ठेस पहुंची थी, हजरत उमर रजी अल्लाह ने कहा मैं माफ नहीं करूंगा, वो सीधे आ गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, मेरी जबान से एक जुमला निकल गया और उमर को ठेस पहुंची है, मैं माफी मांग रहा हूं लेकिन उनको ज्यादा तकलीफ है। तो आपने सबको बुला के कहा, अबू बकर के फजाइल बयान करने शुरू कर दिए, तो हजरत उमर ने कहा मैंने माफ कर दिया इनको। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाते हैं जो शख्स गारंटी ले ले, किस चीज की गारंटी, अपनी जबान की और अपनी शर्मगाह की, मैं गारंटी लूंगा उसके लिए जन्नत में जाऊंगा। बड़ी चीज है, आदमी जबान की जबान काबू में कर ले, लेकिन जब बिगड़ेगी तो फिर देखेंगे नहीं माँ हो बाप हो को। किसी का इंतकाल हो रहा था, जबान से कलमा नहीं निकल रहा था, तो मालूम करे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वजह है, मां नाराज है, मां नाराज है। आपने कहा माफ कर दो इसको। मां कहती है बहुत जबान से मुझे ठेस पहुंचाता था, दिल में बहुत तकलीफ है इसकी, हालांकि नमाज सब कुछ देखो, अगर नमाज अगर कलमा नहीं पढ़ा तो फिर इसका है ना खातिमा सही नहीं होगा। तो मां ने माफ किया, जैसे ही माफ किया जबान पर कलमा जारी हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर एक हदीस सुनाई, फरमाया जिस शख्स ने अपने माँ बाप को बुरा कहा उसकी ना फर्ज कबूल ना उसकी जो है नफिल कबूल, उस पर अल्लाह की, अल्लाह के नबी की और फरिश्तों की लानत हो। दोस्तों जब जबान बिगड़ती नहीं तो माँ बाप भी नजर नहीं आते, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। तो इसीलिए हजरत यहां पर दो वजह से, एक वजह क्या है कुरान में क्या है मालूम, मन जा बिल हसना, जो नेकी हमारे पास लेकर आए। नेकी करना आसान है, नेकी लेकर जाना असल काम है। बहुत से चेक पोस्ट हैं, इन सब चीजों की हिफाजत करते हुए वो नेकी लेके वहां पहुंचना है, कहां पे आखिरत में, उस नेकी की कदर है। जा बिल हसना, जा फेल है बाकी सिला के साथ आया है, माना बदलता है, करने का माना नहीं है, लेके जाने का माना है। जो लेके आए ना मेरे पास, दरमियान में करने के बाद जबान से इनसे हुकूक से अगर बर्बाद कर ले तो हम क्या करें। तो नेकी जिस तरह कर रहे हैं उससे ज्यादा उसकी फिक्र हो कि मैं इसको ले जाऊं। इसलिए हजरत फरमा रहे हैं कि भाई हमें आखिरत में जाना है और वहां जाने के लिए अपना अपने अमलों की हिफाजत जरूरी है। हमारी जबान की हिफाजत असल में अमल की हिफाजत है, जबान की बर्बादी अमलों की बर्बादी है। और दूसरी चीज क्या है, दिलों को नरमी पैदा करने के लिए असल मेहनत करना है। ज्यादा कसरत कलाम दिलों में सख्ती पैदा कर देती है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। एक दुआए मग़फ़िरत की दरख्वास्त आई है, मोहम्मद अब्दुल हक साहब के वालिद हैं ज़मीर साहब, उनका इंतकाल हो गया। दुआ फरमाएं अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाएं, उनके दर्जात को बुलंद फरमाएं, जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाएं। सुभानअल्लाह बिहम्दिही, सुभानकअल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अल मुरसलीन, वल हम्दुलिल्लाहि।